الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ یاسین کی آیات چل رہی ہیں جو کہ آیت نمبر 33 سے 44 تک جو گروپ آف آیات ہے معارف القرآن کے اندر، ابھی ہم اس کی ڈسکشن میں ہیں. کل کے لیکچر سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریکیپ کرنے کی خاطر، کہ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا ٹرانزیشن فرمایا ہے نا، کہ اپنے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انسانوں کے بات کرتے ہوئے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ٹرانزیشن فرمایا اپنی جو بلا واسطہ آیات ہیں ان کے بات کرنے کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بندوں کی طرف کی بات کر رہے تھے، رسولوں کی، اور رسولوں کی جو تبلیغ جن کی طرف تھی ان لوگوں کی. ٹھیک ہے، تو انسانوں کی بات سے ٹرانزیشن فرمایا، اب اپنی بات شروع کی. تو اس میں ہمارے لیے ایک حکمت کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر فوکس یہ بھی اہم چیز ہوتی ہے. دونوں اہم چیزیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ جو انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے چاہے وہ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص اور کمی وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے. اس کے تحت ہم نے آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ رکھا تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے. ٹھیک ہے، درمیانی راستہ، جس کو صراط المستقیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ، درمیان کا راستہ. یہ کن دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ذرا آپ اگر بتائیں درمیان کن دو چیزوں کے. صراط مستقیم، ٹھیک ہے، صراط مستقیم کن دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ صراط مستقیم پر رہنا، اس کے لیے قرآن کے اندر ایک اور لفظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے. وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے تھوڑا سا کوئز کر رہے ہیں. درمیان کا راستہ کن باتوں کے درمیان ہوتا ہے؟ جی، کیا کہا جاتا ہے دنیا کو دین کے رولز کے مطابق چلانا؟ اچھائی اور برائی کے درمیان کا راستہ. اچھا کیا بات ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان کا راستہ، سبحان اللہ، یہ تو ایک نیا دین نکالا ہے. افراط اور تفرید، ٹھیک ہے نا، افراط اور تفرید کے درمیان کا راستہ. ٹھیک ہے، بٹوین ٹو ایکسٹریمز، ایکسٹریمز کے درمیان کا راستہ. ٹھیک ہے، افراط، اور بلکہ افراط کہتے ہیں یا افراط کہتے ہیں، پتا نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، جو بھی ہے، خیر، دو ایکسٹریمز کے درمیان کا راستہ. ٹھیک ہے، اچھا، اب جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کل، تو وہ دو ایکسٹریمز کیا رکھی تھی؟ کیا ہوتی ہے افراط اور تفرید؟ کس کانٹیکسٹ میں افراط اور تفرید کی بات ہوئی تھی؟ کیا مراد تھی افراط اور تفرید؟ یعنی افراط اور تفرید تو بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے نا، مثال کے طور پر کھانا کھانے میں ایک افراط و تفریح ہو سکتی ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کھائے، और दूसरी ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा खाए, ठीक है। तो इनके दरमियान का रास्ता क्या है कि भाई थोड़ा खाए, राइट, अपनी जरूरत के तहत खाए। तो ये खाने खाने के कॉन्टेक्स्ट में दरमियान का रास्ता होगा, ठीक है। लेकिन कल हमने जिस दरमियान के रास्ते की बात करी थी वो किन दो चीजों के दरमियान का रास्ता था, यानी अफरात और तफरीत क्या थी, उलमा की बहुत ज्यादा तकलीफ करना या बिल्कुल ना करना। नहीं, गलत जवाब है आपका, माजरत के साथ। और ये सोच जो आप के जवाब से पता लग रही, ये सोच ही गलत है असल में, ठीक है। बहुत ज्यादा तकलीद करना ये कोई चीज नहीं होती, तकलीद तकलीद होती है, इसमें बहुत ज्यादा और बहुत कम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। उलमा की तकलीद करनी है, इसमें ज्यादा और कम का कोई मामला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ना तकलीद के टर्म को, कॉन्सेप्ट को सही से आप समझ लेंगी तो फिर ये वाली गलतियां नहीं करेंगी। तो इसके इसके इल्म को हासिल करना चाहिए कि तकलीद होती क्या चीज है। शेख के ताल्लुक के बारे में, अच्छा, एक शेख ही सब कुछ है, एक शेख ही सब कुछ है, मुश्किल कुशा है और दूसरा शेख की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह ही काफी है। जी ठीक है, ये बात थी कि हम जो उलमा और मशायख, ठीक है, या अल्लाह वाले, इन अदर वर्ड्स जिनको कहते हैं उलमा और मशायख, यही अल्लाह वाले होते हैं, ठीक है। कोई और अल्लाह वाला, कोई अजीब किस्म की मखलूक नहीं होती अल्लाह वाला, ये उलमा और मशायख ही होते हैं जो कि अल्लाह वाले होते हैं, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम ये है कि इनको बिल्कुल डिनाई कर देना, ठीक है, कि इनकी जरूरत ही नहीं है, और वो जो कुरान की आयत किसी और कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने उतारी है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, उस आयत को यहां पर फिट करना कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की तकलीद करने की जरूरत नहीं है, किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है, किसी की अताअत करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुरान की जो आयत है वो तो बिल्कुल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आई है, ठीक है। और ये जो आप कहते हैं कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं है और अगर किसी की बात मानेंगे तो वह शख्सियत परस्ती हो जाएगी, ये एक एक्सट्रीम व्यू है, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम व्यू है। और दूसरा एक्सट्रीम व्यू ये है कि इन्हीं को सब कुछ समझ लेना, ठीक है, कि इन्हीं की रजा को अल्लाह की, यानी इन्हीं की रजा नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि इनको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करना शुरू कर देना। क्या मतलब, भाई देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्लास में जो लोग हैं ना वो उस अकीदे के तो लोग उम्मीद है कि नहीं है जो कि कब्रों पे जाके सजदे करते हैं, राइट, जो कि उर्स के अंदर जो है वो ढोलक की ताल पर नाचते हैं, ऐसे तो लोग नहीं है ना हमारे इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमारी क्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुमान यही है कि ओवरऑल एक सही अकीदा रखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं उस लेवल की बात नहीं करूंगा कि जी उनकी कब्रों को सजदा नहीं करना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं हमें, राइट। तो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें इस बात की जरूरत है कि हम जिसको अपना पीर बनाए, शेख बनाए, ठीक है, तो अब ऐसा ना करें कि जी अब उसको खुश करने के लिए कि जी उसके हम गुड बुक्स में आ जाएं, ठीक है, हम उसके जो है ना वो मंजूर नजर बन जाएं, ठीक है, हम उसके जो है वो फेवरेट्स में आ जाएं, हम झूठ बोलना शुरू कर दें, राइट, कि जी हमने तो इतना जबरदस्त जो है वो काम किया था दीन का और हमने एक बयान किया था तो उस बयान में इतने सारे लोग आए थे और इतने सारे, और हमने आपका बयान अरेंज किया था, राइट, हजरत से जाके बोल रहे हैं कि जी हमने आपका बयान जो अरेंज किया था ना उसके अंदर इतनी सारी जो औरतें आई थी और सारी औरतों ने आकर के जो है वो तो रो रो करके आपका बयान सुन रही, राइट, और सारी औरतों ने जो है ना वो उस दिन आपका बयान सुन करके जो है वो पर्दा करने का फैसला कर लिया, राइट, सारी औरतों ने पर्दा करने का फैसला कर लिया था। हजरत को क्या कहते हैं, इसको मक्खन लगाना कहते हैं, राइट, बटरिंग कर रहे हैं कि हजरत खुश हो जाएं कि देखो कितना जबरदस्त काम किया और कितना मेरी तारीफें कर रही है, राइट, या मेरा कितनी मेरे जो है वो कितना तारीफें कर रहा है, और इससे जो है ना फिर हम हजरत के करीबी लोगों में आ जाएंगे, राइट, हम शेख साहब के जो है ना मंजूर नजर बन जाएंगे, हमारे ऊपर शेख साहब की खसूसी तवज्जोहात आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, झूठ का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, राइट, और झूठ किसका हक है, बल्कि झूठ जो है किसका हक मारना है, ये अल्लाह का हक मारना है, سچ بولنا یہ اللہ کا حق ہے, ٹھیک ہے؟ تو شیخ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حق مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ شیخ کو خدا سے اونچا درجہ دینا شروع کر دیا, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا جو ہے نا, یہ ہمارے جو عقیدے کے لوگ ہیں نا, جو کہ اوور آل جو بد عقیدہ نہیں کہلاتے ہیں, ہم اس قسم کی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے مشائخ کے لیے کوئی کام کرنا کہ دینی خدمت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اب وہ دینی خدمت جو کر رہے ہیں تاکہ ان کے اسسٹنٹس ہوں, ان کے کام کے اندر جو ہے وہ ہمارا حصہ لگ جائے, ٹھیک ہے؟ اب وہ جو دینی خدمت کر رہے ہیں تو اب وہ دینی خدمت جو ہے نا, وہ اچھی بات ہے کہ شیخ کو بتانا بھی چاہیے, اطلاع بھی دینی چاہیے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے لیے دعائیں نکلے دل سے, ٹھیک ہے؟ اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو مشورے دے سکیں کہ آپ اس کام کو اور اچھے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن اس چیز کو اتنا امپورٹنس دینا کہ جی شیخ کو بتانا ضروری ہے, اگر نہیں بتایا تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہوا کام کرنے کا, پھر تو خدمت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا, اگر شیخ کو پتہ نہیں لگا کہ جی میں نے یہ خدمت کری تھی, ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے نا وہ بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ شیخ صاحب کو بتانے کے چکر میں, اور جہاں بتانا ممکن نہیں ہوا تو اب جو ہے وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیخ کو تو علم ہی نہیں ہوا کہ جی میں نے کیا کام کیا, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے نا گمراہی کی ایک شکل ہے, کیونکہ آپ جو دینی کام کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ کو آپ کے ظاہری اعمال کا بھی نہیں پتا, کہیں نہیں پتا, بلکہ اللہ کو آپ کے دل کی نیتوں کا بھی پتا ہے, رائٹ؟ جس چیز کا کسی انسان کو, کسی مخلوق کو نہیں پتا لگ سکتا, اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو بھائی شیخ کو اگر اطلاع دے سکے اچھی بات ہے, دعا کی خاطر اطلاع دیں اور گائیڈنس کی خاطر اطلاع دیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ جی شیخ کو اطلاع نہ ملے تو بس جی مایوس ہو گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگ رہا, یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا, تو اب کام ہی کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا معاملہ ہوا کہ شیخ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ امپورٹنس دینی شروع کر دی, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یہ یعنی دوسری ایکسٹریم کہلائے گی. اس طرح کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ شیطان انسان سے کرواتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ صراط مستقیم کے اوپر, درمیانی راستے کے اوپر نہ رہ سکے یہ درمیانی راستے پر, اس کو یا تو ایک ایکسٹریم کی طرف گھسیٹتا ہے یا دوسری ایکسٹریم کی طرف گھسیٹتا ہے. اس وجہ سے استقامت سب سے زیادہ مشکل کام ہے, سب سے زیادہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے اندر, داڑھی مبارک میں کسی نے سفید بال دیکھے, ٹھیک ہے؟ تو پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سفید بال کیسے آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورہ ہود کی کون سی والی آیت کی طرف نبی علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے؟ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک, کہ تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اس چیز کے اوپر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. یہ اتنا بڑا بوجھ تھا نبی علیہ السلام کے اوپر کہ اس کی فکر کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو یعنی اتنا فکر کے اندر لگایا کہ اس کا اثر جو ہے وہ داڑھی کے بالوں کے اوپر ہوا اور وہ بال سفید ہو گئے, رائٹ؟ تو استقامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کے لیے جو ہے وہ اللہ سے بہت دعا کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا پڑتا ہے جی اللہ سے دعا کرنے کے بعد؟ اللہ سے دعا کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے استقامت کے لیے, کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ سنت, ٹھیک ہے؟ سنت, اور سنت جو ہے وہ الہام کے ذریعے سے ہمارے اوپر نہیں آئے گی, سنت کو سیکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے؟ سنت کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے دعا کے بعد جو اگلا کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے؟ ضروریات کا علم حاصل کرنا, فرائض کا علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے؟ علم الحال جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ علم الحال, کیسے گناہوں سے بچنا ہے, کیا چیزیں گناہ ہیں. اسی طریقے سے جیسے کل بات ہوئی تھی کہ شیخ کے ساتھ جو اصلاحی تعلق بنایا جاتا ہے, تو یہ سیکھنا کہ شیخ کس کو کہتے ہیں, یہ شیخ چیز کیا ہوتی ہے, رائٹ؟ یہ علم ہے نا, رائٹ؟ شیخ کیا ہوتا ہے اور شیخ کیا نہیں ہوتا ہے, یہ بھی تو علم کا حصہ ہے کہ شیخ کیا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی علم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے علم حاصل کرنا. تو ہم جو سورہ یاسین کی آیت کل پڑھ رہے تھے، سبحان الذی، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے کہ ازواج کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہر چیز کی ازواج کو پیدا کیا، یعنی جوڑوں میں ہر چیز کو پیدا کیا، جو اگتی ہیں زمین میں سے اور تمہاری اپنی جانوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کو کہ تم جانتے ہی نہیں ہو ابھی، ٹھیک ہے. تو اس کے تحت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس کو ہم وہیں سے پڑھتے ہیں، پیج نمبر 384، ٹھیک ہے، 384 پیج کے تقریباً آخر میں، کہ اس میں لفظ ازواج زوج کی جمع ہے، جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے. جوڑے میں دو متقابل چیزیں ہوتی ہیں، یا دو متقابل یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک میل ہوتا ہے دوسرا فیمیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ایک کی کوالٹیز دوسرے میں نہیں ہوتی. غور سے سنیں اس بات کو، سمجھنے کی کوشش کریں. ازواج کس کو کہتے ہیں؟ متقابل، تقابل جن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز، ان ا ویری نیگیٹو ٹرم، اس کو مقابلہ بھی کہتے ہیں، مقابلے پر. لیکن مقابلے سے یہاں پر مراد وہ لڑائی جھگڑے والا مقابلہ نہیں، بلکہ ایک شخصیت رکھتا ہے، دوسرا دوسری شخصیت رکھتا ہے، ٹھیک. متقابل چیزیں، ان کو ازواج کہا جاتا ہے، رائٹ. اور کافر ہمیں کیا سکھاتے ہیں، یہ کفر کیا سکھاتے ہیں، کہ جی وہ جو میری بیوی ہے نا، اس میں تو میرے جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے، رائٹ. دیر از نتھنگ کامن ان بٹوین اس، رائٹ. یہ کفر کیا ہمیں سکھاتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ دیر از نتھنگ کامن بٹوین یو اینڈ یور ہسبینڈ، ٹھیک ہے. تم میں اور تمہارے شوہر کے درمیان تو کوئی کامن چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح شوہر کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ بیوی میں اور میرے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کامن چیز نہیں. مناسبت کا مطلب لے رہے ہوتا ہے کامن چیز، ٹھیک ہے. یہ ان کا جھوٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا وہ ہمیں یعنی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ازواج کے درمیان کامن چیزیں ہونی چاہیے، حالانکہ ازواج کے درمیان کامن چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ازواج کے درمیان کامن چیزیں نہیں ہونی. اچھا میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، انسانی پرسنالٹی، یہ نہیں کہ یہ دونوں مسلمان نہیں ہونے چاہیے، ایک مسلمان ہونا چاہیے دوسرا کافر ہونا چاہیے، رائٹ. ایسا کورس، رائٹ، مسلمان کافر کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر، پرسنالٹی ٹریٹس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ کفر جو ہے نا وہ یہ فلمیں دکھا کر کے اور رومانٹک ناولز پڑھوا کر کے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ جی اپنے جیسا کوئی تلاش کرو، ٹھیک ہے، جس میں اپنی جیسی پرسنالٹی ٹریٹس ہو، جن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم لمبی لمبی گپے مار سکیں. وہ گپے مارنے ہی کہوں گا میں، جس کو کہ ہم کہتے ہیں وہ لمبی لمبی جو ہے نا وہ ہم باتیں کر سکیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان باتوں کی تو یعنی وہ خیر بالکل، ہمارا دین ان رومانٹک بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ بالکل ہی ان رومانٹک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ہمیں اپنے میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ پرنٹ ہو چاہے وہ الیکٹرانک ہو، اس کے ذریعے سے جو ہمیں چیزیں پڑھاتے ہیں نا، ان کی بھی ویلیو کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو ازواج کیا ہوتے ہیں؟ ازواج متقابلات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جوڑے میں دو متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے. جیسے مرد عورت ہیں، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زوج کہا جاتا ہے. اسی طرح حیوانات کے نر و مادہ باہم زوج ہیں، ٹھیک ہے. ان میں نر مادہ میل فی میل کہا جاتا ہے ان کے اندر، حیوانات کے اندر. پھر اس کے بعد تیسری کون سی کنگڈم آتی ہے؟ نباتات کی کنگڈم آتی ہے. ایک ہے انسان، جن کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر حیوانات کی کنگڈم آتی ہے. یہ حیوانات کی جو کنگڈم ہے، جو ان کو اردو میں کیا کہیں گے، ان کا جو عالم ہے، حیوانات کا جو عالم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ نر و مادہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حیوانات کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حیوانات ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جو کہ ہر طرف موو کر سکے، ٹھیک ہے، رائٹ بھی موو کر سکے، لیفٹ بھی موو کر سکے، آگے بھی موو کر سکے، پیچھے بھی موو کر سکے، اور اگر پر لگ جائیں تو اوپر بھی موو کر سکے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو حیوانات کہتے ہیں، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر کے وہ ان ڈائریکشنز کے اندر حرکت کر سکتے ہیں، ان کو حیوانات کہتے ہیں. یہ حیوانات کی تعریف. نباتات ان کے بعد آتے ہیں. نباتات کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو کہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں موو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ صرف اگ سکتے ہیں. نبا یمبا کا مطلب ہوتا ہے اگنا. تو یہ اوپر کی طرف اگتے ہیں اور نیچے کی طرف اگتے ہیں. जड़ें इनकी नीचे उगती हैं और इनकी टहनियां ऊपर उगती हैं, तो ये नबातात होते हैं। तो नबातात के बाद के बहुत से दरख्तों में भी नर और मादा का इदराक किया गया है, यानी साइंस ने बताया है कि नर और मादा होते हैं इनमें भी। खजूर और पपीते के दरख्तों में तो मारूफ और मशहूर है ही, औरों में भी हो तो कुछ बईद नहीं। तो हजरत ने अच्छी खासी स्टडीज करी हुई थी मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो इन इन के अंदर मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट साइंस ने हमें बताया है तो वो अच्छी तरीके से इनको भी मालूम था। जैसे कि लिखा है कि जैसे कि साइंस की जदीद तहकीकात में तमाम फलदार और फूलदार दरख्तों में नर मादा होते हैं और पॉलिनेशन के जरिए से फिर ये फिर आगे बढ़ते हैं, तो इनमें भी तवालुद व तनासुल होना बताया गया है। ठीक है, जिस तरह इंसानों में होता है, हैवानों में होता है, उसी तरह पौधों के अंदर भी इसी तरह से होता है, आगे जो नस्लें इनकी आगे चलती हैं। इसी तरह अगर यही मख्फी सिलसिला जमादात, जमादात किस चीज को कहते हैं, नबातात के बाद जमादात की बारी आती है, जमादात जो जमे हुए होते हैं यानी अपनी जगह पर जमे हुए होते हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। ठीक है, इनको जमादात कहते हैं, जैसे पत्थर। ठीक है, जैसे पानी, ये पानी भी नहीं मूव कर सकता अनलेस कि आप इसको किसी स्लोप के ऊपर डालें, तब मूव कर सकता है। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये सब जमादात के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जैसे सिलसिला जमादात और दूसरी मखलूकात में भी हो तो क्या बईद है कि भाई जमादात में भी मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट हो तो क्या मुश्किल है इसके अंदर, अल्लाह ताला ने बनाया हो, जिसकी तरफ वमिम्मा ला यालमून में इशारा पाया जाता है, यानी तुम अभी नहीं जानते कि पत्थर में मेल फीमेल कैसे होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को, मिम्मा ला यालमूना, वो लोग नहीं जानते इसको कि पत्थर में कैसे मेल फीमेल होते हैं। ठीक है, आमतौर पर हजरात मुफस्सरीन ने अजवाज को बमाने अनवा और अकसाम लिखा है, क्योंकि जिस तरह नर व मादा को बाहम जौजैन कहा जाता है, इसी तरह दो मुतकाबल चीजों को भी जौजैन जौजैन कहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी। राइट, सर्दी की कैफियत जो है वो गर्मी में नहीं होती, गर्मी की सर्दी में नहीं होती। खुशकी और तरी, रंज खुशी, यानी ये कैफियत है रंज और खुशी, तो रंज वाली बात खुशी में नहीं होती, खुशी वाली बात रंज में नहीं होती, तो ये भी मुतकाबलात है, यानी ये भी जौजैन है। बीमारी तंदुरुस्ती, फिर इनमें हर एक अंदर आला अदना मुतवस्सत के एतबार से बहुत दराजात और अनवा और अकसाम बन जाती हैं। इसी तरह इंसानों और जानवरों में रंग व हैयत और जुबान और तर्ज मईशत के एतबार से बहुत सी अनवा व अकसाम हैं। लफ्ज अजवाज इन तमाम अनवा व अकसाम को शामिल है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, कितनी अच्छी डेफिनेशन दी कि अजवाज में फिर ये कुछ शामिल हो जाता है। आयत मस्कूरा में पहले तो मिम्मा तुम्बितुल अर्दु यानी नबातात की अनवा व अकसाम का बयान फरमाया, इसके बाद मिन अनफुसिहिम यानी खुद इंसानी नफूस के अनवा व अकसाम का जिक्र है, और इसके बाद मिम्मा ला यालमूना में वो हजारों मखलूकात शामिल हैं जिनका आज तक भी लोगों को इंकशाफ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ही जानता है कि जमीन की तह में और दरियाओं और पहाड़ों में कितनी अनवा और अकसाम हैवानात, नबातात और जमादात की हैं। एक हमारे दोस्त होते हैं, उन्होंने बताया कि उनका एक हिंदू ना उनके डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। ठीक है, तो उस हिंदू प्रोफेसर ने इनको बताया कि हिंदुओं के आजकल हिंदुओं के 3 करोड़ खुदा हैं। कितने हैं? 3 करोड़। राइट, क्यों है भाई 3 करोड़ खुदा, 4 करोड़ क्यों नहीं है या 1 करोड़ क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब से जितनी उन्होंने ना मखलूकात आइडेंटिफाई करी है अपने मुशाहदे के जरिए से, उनकी तादाद 3 करोड़ तक पहुंचती है, उससे ज्यादा वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर आगे आइडेंटिफाई करेंगे यानी जैसे जैसे उनको मजीद चीजों का इल्म होगा उनको भी वो खुदा बना लेंगे। ठीक है, तो ये यानी मुशरिक का फिर ये मामला होता है कि वो हर चीज को फिर खुदा की तरह से ट्रीट करना शुरू हो जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को खुदा की तरह ट्रीट नहीं करते, हम जो है वो कुछ कुछ ट्रेड्स जो है ना वो इस तरह से करना शुरू कर देते हैं लोगों के साथ, जैसे कि खुदा वाली सिफात उनके अंदर तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, और उसकी भी इस्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा मशायख हमारी याद दहानियां करवाते रहते हैं। जैसे कि पीछे बात हुई थी कि मशायख और उलमा के अंदर खुदा की सिफात नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनके यहाँ तो कोई बताने वाला नहीं है ना, उनके यहाँ गाइडेंस का ये सिलसिला ना किताब है उनके पास, ना उनके पास उन्होंने रसूलों को माना है, तो इस वजह से उनकी खुदाओं की तादाद करोड़ों में पहुंची हुई है। ठीक है जी, इसके बाद जो आयत है ये जो याजिस किताब में से भी पढ़ के आप बता रहे हैं ना, इसमें भी एक रीजन है वरना तो खुद से भी लेक्चर दिया जा सकता है बगैर किताब में से कुछ पढ़े हुए, ठीक है। तो किताब में से खासकर पढ़ करके आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ कुछ बातें, इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि बस आप लेक्चर सुने और बस आपका रिश्ता खत्म हो जाए इसके बाद, बल्कि हमारी नीयत और हमारी दुआ ये है कि आपका रिश्ता जो है ना वो ऐसी अच्छी तफसीर के साथ जुड़ जाए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बेहतरीन चीजें इनके अंदर मौजूद हैं जिनको के हमें पढ़ना चाहिए, राइट, जिनको के हमें यानी अपना वक्त लगाना चाहिए इनके ऊपर, ठीक है, ताकि आप जो है वो तफसीर के साथ जुड़े, और तफसीर भी जो है वो अहले हक की तफसीर, राइट, जो कि सुन्नत के नजर में, सुन्नत की रोशनी में तफसीर किया करते हैं, ठीक है। इसी वजह से पढ़ पढ़ के भी आपको कुछ चीजें बताएंगे, ताकि इंशाल्लाह रमजान मुबारक के खत्म होने के बाद जब तिलावतों का वो जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उस पर फिर तफसीर पढ़ने की इंटेंसिटी आपको बढ़ जाए, ठीक है। मारुफुल कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास इस वक्त, राइट, हम अंदाजा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला यानी के दिल में अल्लाह ने कैसी कैसी बातें डाली जो कि हमारे दौर के हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से यानी इन्होंने ऐसी बातें एक्सप्लेन करी हैं कि याद पढ़ता है और बस अश अश करता है, उसी साहब के दिल से, के लिए दिल से ऐसी दुआएं निकलती हैं। तो इसके बाद जो आयत है वो आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हु नहारा फइज़ा हुम मुज़लिमून, तो इसके तहत भी फरमाया कि जी ये जो यानी अल्लाह ताला की जो आयत हैं, तो उनमें से एक आयत ये है कि अल्लाह ताला जो रात के ऊपर से खाल उतार करके दिन को निकालता है, नस्लखु, सलखा यसलखो का मतलब होता है खाल खींचना, खाल उतारना, ठीक है। तो गोया कि रात जो है ना उसके यानी जो तारीकी है, तो तारीकी जो है वो एक गलाफ की मानिंद होती है, एक खाल की मानिंद होती है, ठीक है। उस खाल को अल्लाह ताला खींच करके जो है ना वो बल्कि दूसरी ये यानी ये इसको ऑपोजिट है कि असल जो है ना असल वो है अंधेरा, ठीक है। इस जहान में असल तो जुल्मत और अंधेरा है, जबकि रोशनी जो होती है ये आरजी चीज है जो सैयारात और सितारों के जरिए जमीन पर छा जाती है, ठीक है। ये जो हमारा सूरज है, सन को कहते हैं, ये एक एक सितारा कहलाता है। इस सितारे के अंदर अल्लाह ताला ने ईंधन रखा है, फ्यूल, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है और आई डोंट नो और क्या क्या गैसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजन शायद मेन गैस है। तो ये जो गैसेस है ना ये जो है वहां पर जलती हैं गर्मी की वजह से ना, ये जलती हैं, जलने की वजह से दो चीजें निकलती हैं, ठीक है। एक चीज होती है रोशनी, लाइट, और दूसरी चीज होती है हीट, गर्मी, ठीक है, हीट एनर्जी और लाइट, ये दो चीजें निकलती हैं सैयारों में फ्यूल के बर्न होने से, ठीक है। तो ये जो लाइट निकलती है ना ये लाइट जो है फिर उनसे फैलती है। सूरज के गिर्द क्या चीज है, खला है, कुछ भी नहीं है सूरज के गिर्द, सिर्फ खला जिसको हम कहते हैं, राइट। तो खला के अंदर ये रोशनी ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते करते जो है ये पहुंचती है सैयारों तक, सबसे पहले जुपिटर, सबसे पहले जो है वो क्या है मर्करी, फिर वीनस, फिर उसके बाद अर्थ आता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये सैयारे जो है ना इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, क्यों, इसलिए कि इनके अंदर कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा होता, ठीक है, फ्यूल तो बर्न हो रहा है वहां पर ईंधन सूरज के अंदर, तो यहां पर कोई रोशनी नहीं है, अर्थ के अंदर कोई रोशनी नहीं है, अर्थ के अंदर क्या है, अंधेरा है, ओरिजिनली अंधेरा है, ठीक है। अब ये रोशनी आती कहां से है, ये सूरज से आती है और अर्थ पे पहुंच करके फिर ये क्यों चीज अर्थ को रोशन कर देती है, ये खला को रोशन क्यों नहीं करती, ये अर्थ को क्यों रोशन कर देती है, खला में क्यों नहीं लाइट आपको नजर आती जी, जरा कोई जवाब देगा इसका। स्पेस, स्पेस का के कभी आपने देखा होगा तस्वीरों में या कभी टीवी पर, ये खला जो है ये हमेशा डार्क क्यों रहती है, हालांकि सामने सूरज है और सूरज की इतनी सारी रोशनी, तो खला जो है वो डार्क क्यों रहती है, फिर वैक्यूम है, चले वैक्यूम है तो फिर डार्क क्यों रहती है, देयर इज नथिंग इन स्पेस टू रिफ्लेक्ट द लाइट। कोई मीडियम नहीं है। मीडियम क्या चीज होती है? जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या मतलब? इतना बड़ा सूरज सामने हो लाइट ट्रेवल करने के लिए नहीं। अच्छा, मीडियम को लाइट ट्रेवल करने के लिए, भाई तो फिर लाइट कैसे ट्रेवल होकर अर्थ तक पहुंच जाती है? अगर मीडियम नहीं है स्पेस, तो फिर लाइट ट्रेवल करके यहां तक, यहां कैसे पहुंच जाती है? भाई रिफ्लेक्शन की कोई चीज नहीं होती, खला में मुनअकिस करने की कोई चीज नहीं होती। इतना बड़ा जो है वो सूरज सामने है, लेकिन खला फिर भी उसकी रोशनी से महरूम है। और अर्थ जो है वो इतनी दूर होती है सूरज से, लेकिन वो रोशन कैसे हो जाती है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है इस रोशनी। तो इसके अंदर भी हमारे लिए एक इंडिया क्या है कि एक हिकमत की बात कि भाई कितना ही बड़ा नूरे हिदायत का सरचश्मा हमारे सामने क्यों ना आ जाए, जैसे कुरान कितना बड़ा हिदायत का सरचश्मा, राइट? अल्लाह का कलाम है, हमारे परवरदिगार का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, राइट? नूरा, राइट? नूर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बशर की तरह, यानी बशर की शक्ल में अल्लाह की तरफ से नूर हिदायत है नबी अलैहिस्सलाम, राइट? लेकिन अगर सामने वाला शख्स रिफ्लेक्ट ना करे, रिफ्लेक्ट का कॉन्सेप्ट इंसानों में क्या होता है? गौर करना, सोचना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, तो वो क्या होता है जी? खला। खला में ऐसा होता है ना, इधर से आई रोशनी उधर से निकल गई, ठीक है ना, अंदर कुछ भी नहीं था, खला था अंदर, तो इस वजह से कोई फायदा ही नहीं हुआ, रोशनी हुई नहीं। उसी तरीके से जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते ना, तो उनको इसी तरीके से कह दिया जाता है कि गोया उनके सर के अंदर भी खला है, जिसी वजह से एक कान से बात निकल जाती है, दूसरे कान से निकल जाती है। अगर वो अपनी अकल को इस्तेमाल करते, गौर और तदब्बुर करते, सोचते और कान धरते, यानी गौर से सुनते भी, पहले हम बात कर चुके हैं ना हिदायत किन जरियों से हासिल होती है, दो तरीकों से। एक तो अपनी अकल को इस्तेमाल करके अल्लाह की मखलूकात के ऊपर गौर करना कि ये चीजें खुद ब खुद नहीं बन सकती, हम यहां पर बेवजह नहीं आए, यहां पर आने का एक मकसद है, और हम यहां से जो जाते हैं चारों तरफ हमारे लोग मर रहे होते हैं, तो कहां चले जाते हैं, क्या होता है आगे जाकर के, इन चीजों पर गौर और फिक्र करना, इसको तदब्बुर कहते हैं, अकल को इस्तेमाल करना और कान धरना, नबियों की बात पर कान धरना, यानी गौर से सुनना और उनको भी सोचना, ऐसे हिदायत मिलती है, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तदब्बुर नहीं होगा, गफलत की जिंदगी गुजारते रहेंगे, तो सामने नबी को भी लाके खड़ा कर देंगे ना, अल्लाह के महबूब को भी लाके खड़ा कर देंगे, हमें कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे अबू जहल को कुछ फायदा नहीं हुआ, अबू लहब को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हम जो ये बातें करते हैं ना कि जी हमें तो, जी हमारे दौर के जो उलमा मशाइख है ना, तो ये तो बात ही ऐसी करते हैं, हमें समझ में ही नहीं आती, इनको तो बात ही करनी नहीं आती, इनके पास तो इल्म ही नहीं है, इनके पास तो फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। हाँ, अगर हसन बसरी रहमतुल्लाह ने आ जाए ना, तो फिर क्या बात है, राइट? फिर कितना हमें फायदा होगा? भाई आपको कुछ फायदा नहीं होगा। हसन बसरी तो क्या, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम भी आ जाए, फिर भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं चाहते, राइट? आप बेसब्री के साथ जो है वो दो बातें सुनते हैं, आपको समझ में नहीं आती, आप कहते हैं यार छोड़ो यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, चलो चलो कोई और काम करते हैं, ठीक है ना। भाई तहम्मुल के साथ आप जरा बात को सुने, फिर उसको समझने की कोशिश करें, तो क्या वजह है कि आपको बात नहीं समझ में आती? अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोगों को बात समझ में आ जाती, आप कौन सी अल्लाह की मखलूक आ गए कि आपको बात समझ में नहीं आती, ठीक है? तो ये फिर शैतान जो है वो फिर और किताबें पढ़ लेते हैं, तो अल्फाज भी कुछ जहन में आ जाते हैं, जी मुझे तो मुनासबत नहीं है इनके साथ, इस वजह से उनकी बात समझ में नहीं आती, राइट? तो ये मुनासबत नाम की जो चीज है ना, ये कहाँ से आ गई? ये किताबों से बस हम इन टर्म्स को पढ़ लेते हैं। बात दरअसल ये नहीं होती कि मुनासबत मुनासबत का मसला नहीं होता, और बात करने वाले की बात का भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि हमने कुछ वॉल्स खड़ी करी हुई होती अपने जहन के अंदर ना, हमने कुछ दीवारें बनाई हुई होती हैं, कुछ रुकावटें बना दी होती हैं, उन रुकावटों की वजह से जो है ना वो कोई भी चीज क्रॉस नहीं हो रही होती हमारे अंदर, ठीक है? वो अंदर आएगी तो फिर वो कुछ काम करेगी ना अपना, हम तो उसको बाहर ही रोक देते हैं, जिस तरह कानों के अंदर वो ठूस देते हैं ना किसी चीज को, राइट? तो अब कान के अंदर आपने कोई चीज ठूस दी है, फिजिकल हो या इमेटीरियल हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए, ठीक है? फिर अगले बंदों को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए, फिर उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए कि नहीं भी मुझे इनकी बात तो नहीं समझ में आती, मुझे उनकी बात समझ में आती है, तो मैं उनके पास जाकर के इन्हें हासिल करता हूँ। राइट, तो फिर जाए उनके पास जाकर इल्म हासिल करें, लेकिन वहां भी नहीं जाते, राइट, वहां भी नहीं जा रहे होते इल्म हासिल करने के लिए। तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि असल में इल्म हासिल करना नहीं चाहते, ठीक है ना, करना चाहते ना तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाते, लेकिन नहीं करना चाहते हैं तो इस वजह से बहाने बना रहे होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन से फायदा होता है, रिफ्लेक्शन के बगैर जो है वो सूरज भी अगर सामने आ जाएगा ना फिर भी अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो इस अंधेरे के ऊपर से ये जो तलाफ होता है इसको उतार देते हैं तो फिर रोशनी हो जाती है। तो रोशनी जो है ना ये आर्जी चीज है, ये हर वक्त नहीं रहती, ठीक है, इसकी कदर करनी पड़ती है, आर्जी चीज की कदर करनी पड़ती है, जो हमेशा रहती है उसकी कदर नहीं, ठीक है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसी वजह से उमूमन ऐसा होता है, उमूमन हमेशा नहीं लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि जो घर में मौजूद रहता है ना हिदायत का की जो बात कर रहा होता है उसकी कोई कदर नहीं कर रहा होता, इसलिए ये तो घर में मौजूद है, ये तो हर वक्त ही अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, उसकी कदर नहीं कर रहे होते। दूर से कोई आता है तो उसको भी थोड़ा सा फिर भी उसकी वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भाई घर में भी अगर कोई चीज मौजूद है ना तो वो भी हमेशा के लिए तो नहीं है ना, जिंदगी किसी इंसान की हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मदीना मुनव्वरा में हमेशा मौजूद रहते थे, तो अगर सहाबा इस तरह से सोचना शुरू कर देते कि ये तो जी हर वक्त ही हमारे पास रहते हैं, हर नमाज में जो है मस्जिद में आ जाते हैं और फिर घंटों बैठे भी रहते हैं हमारे दरमियान, तो चलो जी ये तो हर वक्त की चीज है, इनकी कदर नहीं करते हैं, चलो कहीं और से जाकर कुछ सीख कर आ जाएंगे, राइट, या अभी नहीं करते बाद में इनकी बात सुन लेंगे, तो क्या वो सहाबी बनते, क्या उनको फायदा होता, क्या अल्लाह ताला उनको जन्नत की खुशखबरियां सुनाते, राइट, क्या दुनिया में जो है वो उनका रहती दुनिया तक लंका पचता, कुछ भी ना होता अगर वो कहते हैं कि ये तो हर वक्त ही मदीना में मौजूद रहते हैं जी, इनके क्या हमने मदीना मुनव्वरा में, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड्स की खराबी होती है, हमें एटीट्यूड को फिक्स करने की जरूरत है अगर हम फायदा हासिल करना चाहते हैं, वरना जिंदगी तो वैसे ही चंद दमों की है, खत्म हो जाएगी जैसे तैसे हम गुजार लेंगे उसको। वशम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिल्लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज का क्या मामला है कि वो चलता है अपने मुस्तकर की तरफ, मुस्तकर कहते हैं बेस को, ठिकाने को, जैसे मिलिट्री बेस होता है ना, तो उसके लिए उर्दू में अगर आप ट्रांसलेट करें तो उसको मिलिट्री का मुस्तकर कहा जाता है, ठीक है, एयर बेस को भी मुस्तकर कहा जाता है, हवाई मुस्तकर, तो ठिकाना जो है उसको मुस्तकर कहते हैं। तो शम्स जो है वो अपने मुस्तकर की तरफ चल रहा होता है, जारी है उसका सफर। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये सादा है यानी ये उसकी तकदीर है, अल्लाह ताला ने उसके लिए इस बात को सेट कर दिया है। तकदीर उस चीज को कहते हैं जिसको कि अल्लाह ने सेट किया हुआ होता है, ठीक है, मुकद्दर कर दिया होता है। किसने? अल अजीज अल अलीम, ये अल्लाह ताला एक सिफाती नाम है, बहुत जबरदस्त जोर वाला और बहुत ज्यादा इल्म वाला, ठीक है, इसके इल्म में हर चीज ही शामिल है। तो इसका जो इस अपने मुस्तकर की तरफ चलना है इसके बारे में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने बहुत सारी तफसील लिखी है, लेकिन उसको तो हम पढ़ नहीं सकते वरना तो कई दिन गुजर जाएंगे। तो इस वजह से इसका खुलासा ये है कि मुस्तकर जो है ना, इससे फिर मुफस्सरीन ने दो किस्म के मुस्तकर मुराद दिए हैं। एक होता है मुस्तकर जमानी, यानी इसका जो चलना है ना ये एक मखसूस जमाने तक, वक्त तक जारी रहेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा, और वो वक्त क्या है? कयामत का वक्त, यानी ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा हत्ता के कयामत आ जाए और कयामत के दिन इसका चलना खत्म हो जाएगा। उससे पहले एक ये माइलस्टोन आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जो है वो अपने रास्ते से वापस पलटेगा, जिसको कि हदीस में इन अल्फाज से कहा सूरज जो है मशरिक से तुलू होने के बजाय मगरिब से तुलू होगा, यानी मगरिब की तरफ चलते चलते थोड़ा सा रिवर्स करेगा, थोड़ा सा, ठीक है। ये वो पॉइंट होगा जिसके बाद किसी की तौबा कबूल की जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो मामला खत्म, अब जो मुसलमान है वो है, जो काफिर है वो काफिर ही रहेगा और काफिर ही में रहेगा, अब तौबा कबूल नहीं की जाएगी, इन अदर वर्ड्स कोई तौबा करेगा भी नहीं, ठीक है ना, यानी गोया के बस वो मुकाम ऐसा होगा, दिस स्पिरिचुअलिटी का फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद सूरज जो है वो दोबारा अपने असल हालत पे वापस आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं कि जी अब जो है वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए उल्टा चलेगा उसके बाद दोबारा सीधा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है वो मुस्तकर जमानी कहलाता है, यानी कयामत तक चलता रहेगा। और दूसरा है मुस्तकर मकानी, कि किसी एक मकान तक, किसी प्लेस तक ये चलता है, ٹھیک ہے. تو یہ پلیس جو ہے نا اس کے بارے میں زیادہ لمبی تفصیلات ہیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے روزانہ, یعنی جو چلتا ہے نا تو پھر عرش کے نیچے پہنچ کر کے سجدہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے, اجازت پا کر پھر نیا دورہ شروع کرتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا, یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے جا, پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا. جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی اور اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے اور مبتلا شرک و کفر کی کفر سے توبہ قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ فرمائے نا, تو اب ان الفاظ کے اوپر بڑی ڈسکشن کہ بھئی یہ تو جو آج کل مشاہدے سے ٹیلیسکوپ سے اور جو ہوائی جہاز ہیں یا جو اسپیس کرافٹس ہیں تو ان سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں وہ یہ ہے کہ جی سورج کا جو دور ہے وہ ایسا تو دور نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہنچتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے سجدہ کرتا ہے پھر واپس آتا ہے, ایسا تو معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر واپس چلنا شروع ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تحقیق اس کے اوپر بہت لمبی لکھی ہے, بہت ہی ماشاء اللہ بہترین تحقیق لکھی ہے, اگر کسی کوئی ٹائم نکال کر کے اور سے پڑھے نا تو ویسے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن مختصراً یہ کہ ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جو الفاظ استعمال کیے بہت ساری باتوں میں, وہ الفاظ جو کہ یعنی ظاہری مشاہدے سے متعلق باتیں تھیں عموماً, ٹھیک ہے, تو وہ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق تھے, ٹھیک ہے, کہ ان کو جو ہے نا وہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے, رائٹ. ایسی باتیں نہیں کریں کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منعن یعنی ایسے بیان نہیں فرمایا کہ جو کہ لوگوں کو بالکل ہی سمجھ میں نہ آ سکے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دجال کے بارے میں آپ نے حدیثیں سننی ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ بادلوں پر سفر کرے گا, ٹھیک ہے. اب بادل جو ہے اس زمانے کے لوگ دیکھ سکتے تھے, بادلوں پر سفر کرے گا کیا مطلب, یہ تفصیل صحابہ کو نہیں بتائی, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال جس گدھے پر سفر کرے گا اس کے کان جو ہے وہ بہت لمبے کان ہوں گے, ٹھیک ہے. اب گدھے سے لوگ واقف تھے, ٹھیک ہے, اور گدھے کے کانوں سے واقف تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ چیزوں سے واقف نہیں تھے. ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ خبریں دے رہے تھے نا تو یہ خبریں جو ہیں وہ اس طرح دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, جیسے کہ ہمیں دوسری احادیث سے صراحتاً بھی پتہ لگتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قسم کی سکرین رکھتے تھے, سکرین, ٹھیک ہے, جیسے ٹیلی ویژن سکرین ہوتی ہے, سکرین رکھتے تھے. اس سکرین کے اوپر جو ہے نا وہ آگے کے کوئی واقعات یا کسی دوسرے مقام کے کوئی واقعات پلے ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کسی ویڈیو سکرین کے اوپر ویڈیو پلے ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ کو وہ منظر نظر آ جاتا ہے. اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس منظر کو جو ہے نا وہ اپنی آڈینس کو ایکسپلین کریں, سمجھائیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی میں نے یہ کچھ دیکھا. اب آڈینس جو ہے وہ تو اس نے تو وہ منظر نہیں دیکھا نا, تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ ایسے سمجھائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر سکیں, پورا تو وہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ وہ ریلیٹ کر سکیں اور آگے بیان کر سکیں اگلے لوگوں کو, کیونکہ مقصد تو یہ تھا نا کہ صحابہ بات کو سنیں, یاد کریں اور اگلی نسل کو پہنچائیں, پھر وہ اس کے اگلی نسل کو پہنچائے, حتیٰ کہ پہنچتے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی. یہ اصل مقصود تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنے زمانے کے جو آبزرویشنز ہیں ان کے مطابق ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دجال کے گدھے کو کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے اور ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے آج کے دور کا, پلین جو ہوتا ہے, تو اس پلین پہ جو ونگز ہوتے ہیں وہ انتہائی لمبے ونگز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر سفر کیا جاتا ہے, جیسے اس زمانے میں گدھوں میں سفر کیا جاتا تھا, خچروں میں سفر کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بادلوں کے اوپر ایئر کرافٹس ہوتے ہیں جو اس سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سکرین دکھائی گئی ہو کہ دجال کا جو جہاز ہے وہ بادلوں کے اوپر ٹریول کر رہا ہے, ठीक है, तो अब आप सर ने फरमा दिया कि जी ये तो इसके अंदर सवार है और ये बादलों के ऊपर है, इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरीके से जो सूरज का सजदा करना जो है ना, तो इसकी फिर यानी बड़ी इसकी तफसील भी यानी इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन जो है वो की जा सकती है, जो कि शायद नहीं करी है कि भाई सजदा जो है वो ऐसा नहीं है कि जी हम जिस तरह सजदा करते हैं जमीन पर अपनी पेशानी टेक करके सजदा करते हैं, सूरज भी पेशानी टेक करके सजदा करे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। और सजदे का जो मफहूम है, असल जो मफहूम जो हमारे दीन में लिया जाता है, इबादत का मफहूम, सजदे का मफहूम, वो तो अताअत से लिया जाता है। तो सूरज जो है वो अल्लाह ताला की अताअत करता है इस तरीके से, ठीक है, और वो अल्लाह ताला की अताअत में वैसे ही हमेशा रहता है। तो जिस तरीके से सूरज जो है वो मुस्तकिल अपने मदार में चलता रहता है, वो मुस्तकिल ही सजदे की कैफियत में रहता है, यानी वो मुस्तकिल ही अल्लाह की अताअत की कैफियत में रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अर्श के तहत जो वो ये काम करता है, तो दीगर हदीसों में पता क्या लगता है कि अर्श जो है ना अल्लाह ताला का, वो हर चीज पर मुहित है। जो कुछ अल्लाह ताला की मखलूकात हैं वो सब की सब अर्श के नीचे हैं, और अर्श के ऊपर कौन है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत, कोई फरिश्ता कोई और चीज अर्श के ऊपर नहीं है, सब कुछ नीचे है अर्श के, तहतुल अर्श, ठीक है। तो सूरज भी तो तहतुल अर्श ही है, जमीन भी तहतुल अर्श ही है, जितने आसमान हैं वो भी तहतुल अर्श है, सब कुछ अर्श के नीचे है। तो सूरज जो ट्रैवल करता रहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श के नीचे, तो भाई वो अर्श के नीचे ही रहता है, अर्श के ऊपर तो वो कभी भी नहीं जा सकता ना, कोई चीज अर्श के ऊपर नहीं जा सकती, तो सूरज भी अर्श के ऊपर कभी नहीं जा सकता, ठीक है। तो सजदा भी जो है वो इस तरीके से समझ में आ गया, तहतुल अर्श का रहना भी समझ में आ गया, अल्लाह ताला की इजाजत जो है, ये इजाजत भी जो है वो मुस्तकिलन की इजाजत है, यानी हर वक्त हर उसका जो यानी एक एक उसका जो मोशन होता है वो अल्लाह की इजाजत से होता है, अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं होता कुछ, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, वल कमरा कदरना। अच्छा, किसी को कोई सवाल हो तो बिला तक लोग पूछ सकते हैं, बल्कि मैंने देखा भी नहीं पूछा है। अच्छा आगे है, वल कमरा कदरना हु मनाजिला हत्ता आदत अलउजून अलकदीम, और चांद को हमने यानी बांट दी हैं या उसके लिए मुकद्दर कर दी हैं मनाजिल, ठीक है, हत्ता के वो बन जाता है या लौट जाता है, आधा या उर्दू का मतलब होता है लौट करके किसी मुकाम पर चले जाना, तो वो लौट जाता है ओरिजिनल कदीम की तरह, पुराना यानी यानी खजूर की पुरानी टहनी की तरह, ठीक है, खजूर की पुरानी टहनी, ओरिजिन कहते हैं खजूर की टहनी को या खाली टहनी को, और कदीम का मतलब पुराना, तो खजूर की जो टहनी होती है, तो जब वो अच्छी तरीके से सूख जाती है, बहुत पुराने खजूर के दरख्त की टहनी को अगर आप देखें तो वो जैसे एक बुरसीदा सी पतली सी चीज हो जाती है ना, तो चांद भी उसी तरीके से अपनी मनाजिल तय करता करता जो है वो ऐसे पतला सा मुरझाया सा हो जाता है, ठीक है। तो चांद के लिए फिर मनाजिल का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उस पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि मनाजिल तो सूरज भी तय करता है, ठीक है ना, सूरज भी जो है वो अपने मदार में चल रहा है, जैसे कि अगली आयत में आया, चांद भी अपने मदार में अपने ऑर्बिट में चल रहा है, तो सूरज भी अपनी मनाजिल तय कर रहा है, चांद भी अपनी मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन सूरज के लिए मनाजिल का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि सूरज की जो मनाजिल होती है ना, उनको जो है वो हम अपनी आंखों से ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। दिन में अगरचे कि वो सूरज जो है वो थोड़ा सा लाइट होता है, थोड़ा सा कम गर्म होता है, फिर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, वो भी कोई जाके पूरे होराइजन के ऊपर ट्रैवल करता है ना, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, लेकिन वो गोल ही होता है, राइट, शुरू भी वो गोल से ही करता है, आखिर में भी गोल ही होता है, वो कोई बीच में चांद के तरीके से हिलाल, फिर उसके बाद कमर, फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं होता है उसके अंदर। और दूसरा ये भी कि सूरज इतना होता है कि हम उसको ऑब्जर्व कर भी नहीं पाते, उसकी तरफ देखने की भी हमारे आंख के अंदर सलाहियत नहीं है, जबकि चांद का मामला ये है कि एक तो हम चांद को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, दूसरा ये कि चांद जो है वो रोजाना जो है वो एक अलग ही शक्ल में तुलू होता है, शुरू में बिल्कुल बारीक तरीन हिलाल जिसको कहते हैं पहली तारीख का चांद, फिर तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, अगले दिन फिर और थोड़ा मोटा होता है, तो ये मनाजिल हैं जो कि इजिली ऑब्जर्वेबल हैं हमारी आंखों से, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मनाजिल का जो लफ्ज है वो सूरज के लिए इस्तेमाल नहीं किया, चांद के लिए इस्तेमाल किया। सूरज की मनाजिल को कैलकुलेट करने के लिए हमें बाकायदा जो रियाजी के एरिथमेटिक के हिसाब किताब होते हैं उनके जरिए से उसकी मनाजिल को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता। इसके बाद फरमाते हैं लशमसु यम बगी लहा अन तुद्रिक अलकमरा वलद्दैल साबिक अन्नहार वकुल्लुन फी फलक यस्बहून, कि नहीं है चांद के लिए, नहीं है सूरज के लिए कि वो पहुंच जाए चांद के आगे। ठीक है, गोया के दोनों अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं और दोनों के रास्ते जुदा हैं, ना तो सूरज चांद को क्रॉस करता है ना चांद जो है वो सूरज को क्रॉस करता है। ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है ना, ये क्रॉस करना नहीं कहलाएगा, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग ऑर्बिट्स हैं उसके दोनों के। ठीक है ना, तो साल में कुछ मुकाम मौके ऐसे आते हैं कि जब ये इसके सामने आ जाता है हमारे एतबार से खाली, ठीक है, हमारे रेफरेंस से वो सूरज जो है वो चांद और हमारे दरमियान आ जाता है, या जो है वो चांद जो है वो सूरज और हमारे दरमियान आ जाता है, इस वजह से अगले को ग्रहण लग जाता है ये। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे रेफरेंस के हिसाब से होता है ना, असल में तो ये दोनों एक दूसरे को कोई यानी मुकाबला तो नहीं कर रहे होते एक दूसरे से। तो हर कोई जो है वो अपने फलक में, फलक से यहाँ पर मुराद ऑर्बिट है, ठीक है, ये कोई आसमान मुराद नहीं है, बिकॉज आसमान के लिए भी लफ्ज फलक इस्तेमाल होता है उर्दू में भी और अरबी में भी। युसब्बिहून यानी ये तैर रहे हैं, यानी ऐसी सॉफ्ट मूवमेंट है इनकी कि जैसे कि एक तैरने वाले की मूवमेंट होती है। जब हम चलते हैं तो हमारी चाल के अंदर जो है ना वो सॉफ्टनेस नहीं होती, हम ऊपर नीचे जो है वो मूव भी कर रहे होते हैं, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, और जमीन जो है वो थोड़ी सी कभी ना हमवार होती है तो और भी ज्यादा जो है वो हमारा चाल जो है उसके अंदर यानी रिगिडनेस आ जाती है, ठीक है, यानी सख्ती आ जाती है। जबकि तैरने वाला जो होता है, पानी में तैर रहा हो या फिजा में तैर रहा हो, तो वो बहुत ही स्मूथली जो है वो तैर रहा होता है। तो इन दोनों के लिए भी अल्लाह ताला ने तैरने का लफ्ज इस्तेमाल किया उनकी स्मूथनेस की वजह से। यानी ये शेक नहीं करते, शेक करते हुए नहीं तैरते, ठीक है, शेक करते हुए नहीं चलते हैं, बल्कि बहुत ही स्मूथली चलते हैं। वो आयतुल लहुम, और आयत है उनके लिए यानी और करने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए, इंसानों के लिए, अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्क मशहून, ये हमारा उठाना, हमल करना, जैसे औरत जो है वो अपने बेबी को उठाती है तो उसको कहते हैं ये हामिला है, उठाने वाली, ठीक है। तो हमलना का मतलब हमारा, हमने उठाया, ज़ुर्रियतहुम उनकी ज़ुर्रियत को, ज़ुर्रियत मीनिंग उनके बाल बच्चे, फैमिलीज, फिल फुल्क मशहून, फुल्क कश्ती को कहते हैं, और मशहून का मतलब भरी हुई कश्ती, ठीक है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने कश्ती को का जो सिस्टम बनाया ना, वो ऐसा बनाया कि इंसान खुद भी उस पर सवार होता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर भी सवार हो जाता है उसके ऊपर। तो कश्ती जो है वो बजाहिर भरी हुई नजर आती है लेकिन ये डूबती नहीं है, ठीक है। ये जो लॉ बनाई, जिस लॉ को जो है वो लॉज ऑफ बॉयंसी कहते हैं, बॉयंसी, ठीक है, यानी तैरने वाली लॉ, जिसको यू नो साइंटिस्ट ने, या जो आर्शमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है, ये एक यूनान के जमाने का एक मुहक्किक था, ठीक है, वो उसने एक दफा जो है वो यानी सोचता रहता था कि जी ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, कैसा होता है, जैसे फिजिसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो एक दफा जो है वो किसी तालाब में जो है वो तैर रहा था, बैठा हुआ था तालाब के अंदर, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना अल्लाह ताला ने इसके दिल में इल्हाम फरमाया कि भाई देखो ये ऐसे होता है मामला, ठीक है, जिसको कि लॉज ऑफ बॉयंसी कहते हैं कि कोई चीज जमीन पर कैसे तैरती है, क्यों तैरती है, डूब क्यों नहीं जाती, ठीक है। तो ये लॉज, ये यानी ये जो तरीका है, ये किसने बनाया, ये आर्शमिडीज ने तो नहीं बनाया ना, ये किसी फिजिसिस्ट ने तो नहीं बनाया, आइंस्टाइन न्यूटन ने तो नहीं बनाया, न्यूटन आइंस्टाइन आर्शमिडीज जितने भी हैं ये सारे तो खाली ऑब्जर्व करके इनको अपने जुबानों में एक्सप्लेन कर देते हैं। बनाने वाला कौन है इन उसूलों को कि कौन सी चीज डूबेगी कौन सी नहीं डूबेगी, राइट, ये तो अल्लाह ताला की जात है ना। तो अल्लाह ताला ने ये कश्तियों का सिस्टम बनाया कि कश्ती डूबती नहीं है। अब इसकी तफसील जो है वो उसका भी मुकाम नहीं है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं, लॉज ऑफ बॉयंसी क्या होती है। एक लोहे का टुकड़ा, राइट, उस लोहे के टुकड़े को आप पानी में डालें वो डूब जाएगा, राइट, लेकिन उसी लोहे की आप जहाज बना दें, ठीक है ना, वो क्या नाम था उसका, टाइटैनिक, लोहे का बना हुआ जहाज, वो तो नहीं डूबता, वो अल्लाह ने डुबा दिया तो दूसरे तरीके से डुबा दिया, लेकिन वैसे तो वो तैरता था ना, हालांकि लोहे का बना हुआ था तो क्यों नहीं डूबता था भाई। लोहे की कील क्यों डूब जाती है, तो थोड़ा बहुत गौर करने के लिए काफी है। अच्छा, इसके बाद फरमाया वह खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और हमने तख्लीक किया इनके लिए इसकी जैसी और चीजें, यानी फुल्क के कश्ती के जैसी और चीजें, मा यरकबून, जिनके ऊपर ये सवार होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मुफस्सरीन ने बड़ा उम्दा कलाम किया, उसको पढ़ लेते हैं जरी से, ताकि आपको भी पता लगे इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो फरमाया कि मिम्मिस्लिही मा यरकबून, पेज नंबर 394, 394 ना, तो पहली लाइन बिल्कुल इसकी वहां से पढ़ रहा हूँ कि पहले जमीनी मखलूकात का, फिर आसमानी का बयान, और इनमें अल्लाह ताला शानहू की हिकमत व कुदरत के मजाहिर का बयान आ चुका है। इस आयत में बहर और इससे मुतअल्लिका अशिया में मजाहिर कुदरत का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने कश्तियों को खुद वजनी बोझ से भरी हुई होने के बावजूद पानी के सतह पर चलने के काबिल बना दिया, कि पानी उनको गर्क करने की बजाय दूर मुल्कों तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कश्ती में इतना सारा सामान डाल देते हैं, गाड़ियां डाल देते हैं और ट्रक्स डाल देते हैं, ना जाने क्या क्या उसके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी नहीं डूबती। और आयत में इरशाद ये है कि हमने इनकी जुर्रियत को कश्तियों में सवार किया, हालांकि सवार होने वाले खुद ये लोग थे। जुर्रियत का जिक्र शायद इसलिए किया कि इंसान का बड़ा बोझ उसकी औलाद और जुर्रियत होती है, यानी कहते हैं ना जी, खानदान का बड़ा बोझ है इसके ऊपर, राइट? तो जुर्रियत जो होती है वो इंसान एक होता है, यानी कमाने वाला मर्द जो है या घर का जो बड़ा होता है वो एक होता है, और माशाल्लाह बच्चे जो है वो दो तीन चार पांच, पहले जो है वो 10 10 11 11 होते थे, और भी ज्यादा होते हैं, आज भी होते हैं कुछ लोगों के घरों में 28 28 बच्चे होते हैं। एक तो माशाल्लाह एक हजरत के पास जाना हुआ, उन्होंने बताना शुरू किया उनके एक दोस्त के इस जमाने में अभी 70 बच्चे हैं, 70, दूसरे के 100 बच्चे हैं, माशाल्लाह, राइट? तो जुर्रियत कितनी बड़ी होती है, यानी कितना बड़ा इंसान के ऊपर बोझ होता है उसकी जुर्रियत, खुसूसन जबकि वो चलने फिरने के काबिल ना हो। तो अगर छोटा बच्चा होता है तो फिर तो वैसे भी गोद में उठा के चलना पड़ता है उसको। मतलब आयत का ये है कि सिर्फ यही नहीं कि तुम खुद इन कश्तियों में सवार हो सको, बल्कि छोटे बच्चे और जयीफ आदमी के और उनके सब सामान ये कश्तियां उठाती हैं। और खलकना लहुम में मिसली ही मा यरकबून के मानी ये है कि इंसान की सवारी और बार बर्दारी के लिए सिर्फ कश्ती ही नहीं, बल्कि कश्ती के मिसल और भी सवारी बनाई है। इससे अहले अरब ने अपनी आदत के मुताबिक ऊंट की सवारी मुराद ली है, क्योंकि ऊंट बार बर्दारी में सब जानवरों से ज्यादा है, बड़े बड़े बोझ के अंबार लेकर मुल्कों का सफर करता है। इसीलिए अरब ऊंट को सफीनतुल बर, यानी खुश्की की कश्ती कहा करते थे। ठीक है, शिप ऑफ द डेजर्ट अंग्रेजी में कहते हैं ऊंट को। तो ये तो उस जमाने की बात है जब ये ऑटोमोबाइल्स नहीं बनी थी, एयरक्राफ्ट नहीं बने थे, तो अरब जो है फिर कश्ती की तरह से ऊंट को इस्तेमाल किया करते थे, और उसको सफीनतुल बर कहा करते थे, सफीना कश्ती को कहते हैं। तो अब जो जमाना है जिसके अंदर के नई इजादात हुई, उसके बारे में अब फरमा रहे हैं कि कुरान में हवाई जहाज का जिक्र, राइट? कुरान में है हवाई जहाज का जिक्र, मगर ये जाहिर है कि कुरान ने इस जगह ऊंट या किसी खास सवारी का नाम नहीं दिया, बल्कि मुबहम बात छोड़ दी जिसमें हर ऐसी सवारी दाखिल है जो इंसान और उसके असबाब व सामान को ज्यादा से ज्यादा उठाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। इस जमाने की नई इजाद हवाई जहाजों ने यह बात वाजे कर दी है कि मिम्मिसलिही का सबसे बड़ा मिसदाक हवाई जहाज है, और कश्ती के साथ इसकी तमसील भी इसकी ज्यादा मुअय्यद है, यानी इस बात की और ज्यादा तायीद करती है कि हवाई जहाज ही यहाँ पर मुराद है, कि जिस तरह पानी का जहाज पानी पर तैरता है, पानी उसको गर्क नहीं करता, हवाई जहाज हवा पर तैरता है, हवा उसको नीचे नहीं गिराती। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की जो है वो उसको नीचे खींच नहीं लेती, हवा उसको ऊपर की तरफ पुल पुश करती है। कैसे पुश करती है वो सब तफसील है साइंस की। और अजब नहीं कि कुरान करीम ने इसी ये मिम्मिस्लिही मा यरकबून को मुबहम रखा हो, ताकि कयामत तक ईजाद होने वाली सब सवारियां इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, जिस किस्म की भी सवारी हो, चाहे हवाई जहाज की शक्ल की हो, चाहे वो आजकल जो ड्रोन्स निकल आए हैं जिनको कि हम हवाई जहाज नहीं कहते, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर मुराद हो सकती हैं, जो वो जिसको यूएफओस कहा जाता है, राइट? यूएफओस जो है वो एक जमाने में बड़ा मशहूर था ना, कि ये यूएफओ नजर आती थी फिर गायब हो जाती थी, तो वो लोग उसको सोचते थे समझते थे कि क्या चीज है ये, कैसे उड़ती है, ये तो प्लेन्स की तरह नहीं उड़ती थी। प्लेन्स जो है वो पीछे से उनकी एग्जॉस्ट जो होती है वो जेट इंजन जो है ना वो पीछे एग्जॉस्ट को फेंकता है तो वो आगे मूव करते हैं, और के अंदर जो है वो विंग्स होते हैं जो कि उनको फ्लोट करवाते हैं, फ्लोट करने का में मदद देते हैं। लेकिन ये जो यूएफओज होती थी इनके अंदर ये दोनों चीजें नहीं होती, नजर नहीं आती थी इनके अंदर, विंग्स भी नजर नहीं आते थे। ये भी तो कहते थे भी ये किस किस्म की मोशन है, सीधा भी जाती है, राइट भी चली जाती है, लेफ्ट भी चली जाती है, राइट। लेकिन अब क्या पता लगा ये यूएफओज जो थी ना ये कोई बाहर से नहीं आती थी, ये असल में ये ड्रोन जो होते थे जो कि अब जो है वो माशाल्लाह हर एक के पास अवेलेबल है। पहले जो है ये सिर्फ मिलिट्री वाले इस्तेमाल कर रहे होते थे, तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो होती है उसको वैसे भी छुपा करके रखा जाता है ना, तो इस वजह से ना लोगों को पता नहीं होता था कि ये है क्या। वो कभी कभी देखते थे गलती से नजर आ जाती थी तो फिर उसको स्पेस की कोई मखलूक समझा करते थे। ये नॉन मुस्लिम्स की बात, वो ऐसी बातें सोचते हैं ना कॉमिक्स पढ़ पढ़ करके। तो असल में तो वो ये ड्रोन आर्किटेक्चर था जो कि अब जो है वो बच्चे बच्चे के हाथ में, ठीक है। तो दज्जाल का भी वैसा ही लगता है कि उसके पास भी है ना कोई ड्रोन टाइप टाइप की ही कोई चीज हो। एनीवेज तो ये हो गया, बस आखिरी आखिरी आयत दो आयतें हैं, नहीं आखिरी एक आयत है, दो आयतें हैं, इसको पढ़ करके क्लास खत्म करते हैं। वइन नशा नुग़रिक़हुम, और अगर हम चाहें तो उनको डुबो दें, फला सरीख लहुम, और उनकी यानी कोई ना पहुंचे उनकी फरियाद, यानी वो चीखते रहे कि हमारी कश्ती डूब रही है, राइट। प्लेन्स जो क्रैश होते हैं, राइट, वो क्रैश जो होते हैं जमीन पे आके क्रैश होते हैं, ऊपर से जब वो नीचे आते हैं तो हम तसव्वुर कर सकते हैं क्या होता होगा उस प्लेन के अंदर लोगों का हाल, राइट। अब तो कुछ वीडियोज वगैरह भी लोग बना लेते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर जो है वीडियोज भी, ये अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, जुनैद जमशेद साहब का जो तैयारा क्रैश हुआ तो कुछ वीडियोज भी आई उसकी, ठीक है, कि भाई प्लेन में क्या हो रहा था। तो चीखो पुकार, राइट, इमेजिन करें सबको पता है हम मर रहे हैं, चंद सेकंड की बात भी नहीं है मर जाएंगे, जहाज नीचे आ रहा है तो कैसे चीखते होंगे, ठीक है ना। तो उस वीडियो के अंदर वो माशाल्लाह जो अल्लाह वाले थे वो खामोश अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे गलतियों को, माफ कर दे, राइट, कबूल फरमा ले हमारी जिंदगी को, ठीक है। तो अल्लाह वाले फिर चीख नहीं रहे होते, बाकी लोग तो चीख रहे होते हैं ना। तो फला सरीखा लहुम, उनकी चीखो पुकार चलती रहती है, कोई उनकी मदद को नहीं आ सकता, क्योंकि जब डूबने वाला मामला होता है तो फिर बस खत्म। फला सरीखा लहुम वला हुम युनकदून, और ना वो छुड़ाए जाए, कोई उनको वहां से छुड़ा नहीं सकता, उस मौत से कोई उनको नहीं बचा सकता, अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन, मगर हम अपनी मेहरबानी से और उनका काम चलाने को एक वक्त तक, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है कि एक मियाद मुअय्यन तक अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर मौका दिया होता है कि अमाल कर लो, ईमान ले आओ, बात मान लो, नेक बन जाओ, गुनाहों से बच जाओ, ठीक है। उसके बाद जब वो मियाद मुअय्यन खत्म हो जाती है तो बस उसके बाद फिर कोई छुड़ाने के लिए नहीं आ सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कमजोर सी काविश को, अपने दीन को समझने की, अपने कुरान से रिश्ता जोड़ने की, इसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल फरमा ले, रमजान मुबारक के मुबारक साथियों को हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती बना दे, हमारे तमाम आमाल को कबूल फरमा ले।